الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. یہ جو ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں. جاہدوا، جاہدوا کا مطلب جد و جہد کرتے ہیں، یعنی کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں. ہمارے راستے میں، ہمارے راستے کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم تک پہنچانے والا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کوئی ہائی وے تو نہیں ہے نا، کوئی سڑک تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ اس والی سڑک کے اوپر جا کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں، رائٹ. جیسے ریاض شہر کے اندر شارع ملک فہد، ٹھیک ہے، تو جو لوگ ملک فہد شارع کے اوپر جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، یا کراچی کے اندر جو ہے وہ شارع فیصل، جو لوگ شارع فیصل پہ جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد پڑھ کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں نیکی کے اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے آپ بتا دیں، کیا مطلب ہے ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ضرور بالضرور ہم اپنے تک پہنچنے کے لیے ان کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، آستہ یعنی آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی سڑک کا نام ہے اللہ کا راستہ، ٹھیک ہے، یا کوئی پگڈنڈی ہے، کیا ہے یہ اللہ کا راستہ؟ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں جی، کیا مطلب ہے اس کا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا، یا ہمارے اندر جدوجہد کر، لفظی ترجمہ تو ہوگا ہمارے اندر جدوجہد کر، ہمارے اندر جدوجہد کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ کے حکم ماننے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں، جو وہ محنتیں کرتے ہیں نا، وہ محنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت اور سنت بھی، شریعت اور سنت، ٹھیک ہے. تو جو لوگ شریعت اور سنت پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا وعدہ کرتے ہیں ان سے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستے کے اوپر، یعنی ان کو جو ہے نا وہ اپنے قریب کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور ان کو مزید، ایک اور بھی اس کا مطلب کیا کہ ان کو پھر مزید شریعت اور سنت کے اوپر چلنے میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، توفیقیں دے دیں گے، ان کو توفیق دے دیں گے، ٹھیک ہے، مزید عبادت کی، مزید نیکیوں کی، مزید شریعت کی پابندی کی، مزید سنت پہ عمل کرنے کی ان کو توفیق دے دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، ہمارے پروردگار کے وعدے ہیں، اور ہمارا پروردگار جو ہے نا وہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ بھی قرآن مجید میں ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان وعدوں کو پہلے تو جانیں، इनका इल्म जाने, इनका इल्म हासिल करें कि अल्लाह ताला ने क्या वादे किए हैं हमसे, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हमसे क्या वादे किए हैं, इनका इल्म हासिल करें। और उसके बाद फिर दूसरा काम क्या है कि इनके ऊपर एतमाद करें, इनके ऊपर एतमाद करें कि वाकई अल्लाह ताला ने जो वादे किए हैं ये अल्लाह ताला पूरे भी फरमाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर एतमाद करें। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इल्म हासिल कर लिया, जान तो लिया कि फलाने शख्स ने क्या वादे किए हैं, लेकिन आपको एतमाद नहीं है उसकी बात के ऊपर, ठीक है, तो फिर जानने से तो फिर आपको कोई फायदा नहीं हुआ ना, जब तक आपने वादे पे एतमाद नहीं किया, ठीक है। तो एतमाद करना और फिर उसके मुताबिक अमल करना, उन वादों के मुताबिक, जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा मामला करूंगा, तो वैसा करने की कोशिश करना, ठीक है। तो तीन काम क्या करने के हैं एक इंसान के, जो अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह की मखलूक होता है, कि क्या है उसके तीन काम करने के। पहली चीज कि अल्लाह ताला के वादों को जानना, फिर दूसरी चीज कि अल्लाह ताला के वादों पर एतमाद करना, और तीसरी चीज कि उन वादों के मुताबिक अमल करने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे शरीयत को फॉलो करना, शरीयत को फॉलो करना, ठीक है। शैतान जो हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ शैतान भी तो है ना, शैतान का क्या काम है कि शैतान हमें अल्लाह ताला के वादों को जानने से रोकता है, ठीक है ना, वो रोकता है, वो बहाने बनाता है कि तुम दूसरा कोई काम कर लो, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, दूसरी बातों को जानना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, अल्लाह के वादों को जानने की जरूरत नहीं है। उस तरफ से ना वो हमें गाफिल करता है, ठीक है, वो हमें उस तरफ से गाफिल करता है। और फिर दूसरा वो ये भी काम कर रहा होता है, हर चीज का उलट करता है बेसिकली। दूसरा काम ये करता है कि अगर किसी को वादे का पता चल गया, जैसे क्लास ले ली, ठीक है ना, किसी के कहने पे क्लास ले ली, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्लास ले ली, तो वादों का पता चल गया कि अल्लाह ताला ने ये वादा किया, तो अब पता तो चल गया, लेकिन फिर वो एतमाद करने से रोकता है, ठीक है ना, ये बस ठीक है जान लिया, एतमाद करने की जरूरत नहीं है ना, नो डोंट टेक इट टू सीरियसली, इसको संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस क्लास थी, बस सुन ली, खत्म हो गई बात, तुम्हारे इंफॉर्मेशन बढ़ गई, राइट, नॉलेज बढ़ गई तुम्हारी, बस ज्यादा इसको अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जाहिर है फिर तीसरी बात यही है कि वो उसके ऊपर अमल करने से भी इंसान को रोकता है। तो हम क्या है कि हम शैतान की मुखालफत करें, हम शैतान की मुखालफत करें, हम जो है वो उसके इन वसवसों और उसके इन आइडियाज को इग्नोर करके हम अल्लाह के वादों को जानने की मेहनत में लग जाएं, यानी कुरान मजीद का इल्म हासिल करने में लग जाएं, ठीक है, और हम इस एतमाद के साथ, इस यानी सोच के साथ लगें कि जो जो हमें पता चलता जाएगा ना, हम उसके ऊपर एतमाद भी करते चले जाएं, एतमाद भी करते चले जाएंगे कि हाँ यही है जैसे कि अल्लाह ने अपने कुरान में हमें बताया है, और फिर अमल करने की ना कुछ कोशिश भी करते रहेंगे, तब जो है ना ये सारी किताबें और ये क्लास लेने का फायदा है। और अगर हमने ये वाले तीन काम नहीं किए ना, तो फिर बस क्या है, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, और आप जो है वो पता नहीं कोई अपना तमगा बना रही हैं कि जी हमने वो किताब भी पढ़ी थी, हमने वो वाली किताब भी पढ़ी थी, हमने वो वाली क्लास भी अटेंड करी थी, ठीक है ना, जिससे इस तरह सर्टिफिकेट्स के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए आखिर में, ठीक है, तो तमगे मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि हम उनको सजाएंगे, घर में लगाएंगे, या तो हम दूसरों को दिखा के खुश होंगे, या अगर दूसरों को नहीं भी दिखाते तो खुद देख देख के खुश होते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद देख देख के खुश होते रहते हैं, दूसरों को नहीं दिखाते, ठीक है, तो ये मकसद तो नहीं है ना कि आप खुद देख देख के खुश हों या दूसरों को दिखा दिखा के खुश हों, ठीक है भाई, एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर तो हमें ये तीन काम करना है, तब जो है वो फायदा हुआ, जब ये तीन काम नहीं किए तो टाइम जाया किया और चले गए दुनिया से, और फिर उसके बाद दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। तो ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि अखलाक हमीदा और उनके हासिल करने के तरीके, ये अखलाक हमीदा भी क्या है, ये वही है, वल्लजीना जाहदू फीना, ठीक है, कि अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना, तो उनमें सिर्फ नमाजें पढ़ना नहीं आता, उनके अंदर उसके अंदर सिर्फ वुजू वो रोजे रखना और जकात देना नहीं आता, बल्कि इसके अंदर अखलाक हमीदा को अपने अंदर पैदा करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, जब भी कहते हैं ना कि शरीयत की पाबंदी और सुन्नत के ऊपर अमल, तो अखलाक हमीदा जो है वो सुन्नत के ऊपर अमल कहलाएंगे। शरीयत की भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, लेकिन आमतौर पर ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, उनके ऊपर अमल करा। ठीक है, तो उसमें से एक सुन्नत क्या है नबी अलैहिस्सलाम की? नमाज में दिल लगाना। ठीक है, यानी खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम नमाज से मोहब्बत, ठीक है ना, जब भी फरमाया कि अस्सलातु मिराजुल मोमिन, ठीक है कि देखो मैं तो ऊपर चला गया ना, अल्लाह ताला जो है ना फरिश्तों जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज करके मुझे ऑल द वे अब उन्होंने बुला लिया और मुझे मुलाकात के शर्फ अता फरमा दिया, तुम्हें ये वाला शर्फ तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो ये नमाज है ना, यही अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है। तो अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो या मोहब्बत की तुम्हें चाहत है, तो नमाज के ऊपर मेहनत करो अपनी। ठीक है, और नमाज तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये बेशक नमाज तो फोहश और बुरे कामों से रोकती है, तो तुम्हारी ऐसी नमाज होनी चाहिए जो तुम्हें फोहश और बुरे कामों से रोक भी सके। मतलब क्या कहने का कि नमाज पर मेहनत करना, ठीक है, नमाज बनाने के ऊपर मेहनत करना। तो अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत, उन्होंने इसके लिए हमें कुछ टिप्स दिए हैं कि कैसे नमाज को अच्छा बना सकते हो। तो फरमाते हैं कि नमाज से कोई अमल क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद और तस्बीहात वगैरह बेतवज्जुही से अदा ना हो, बल्कि हर अमल ध्यान और तवज्जो से अदा हो। मसलन तकबीर तहरीमा कहते वक्त ये ध्यान रखे कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा उसकी इबादत कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या मतलब है इस बात की तरफ ध्यान रखे? ठीक है, ये सामने कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, कोई दीवार है, कुछ, यानी ध्यान रखने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को गौर से देख रहे हो ना, ठीक है ना, उसकी तरफ ध्यान रख रहे हैं। या अगर आप किसी चीज को गौर से देख नहीं रहे अपनी दो आंखों से, तो ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि आपकी सोच हो उस तरफ, आप उस तरफ सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि आपने चूल्हे के ऊपर हंडिया चलाई चढ़ाई, ठीक है, या चाय चढ़ा दी, चले आप हंडिया क्या का आप लोगों को ज्यादा पता है, मुझे तो चाय ज्यादा ज्यादा पता है, अल्हम्दुलिल्लाह है, चाय के अलावा कुछ बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, बेगम साहब बना लेती हैं, अल्लाह उनको ज्यादा खैर दे। तो चाय चढ़ाई आपने, ठीक है, आपने दूध भी डाल दिया, आपने पत्ती भी डाल दी, उसके बाद फिर जो है ना वो आपने सोचा कि मैं जो हूं ना जा करके वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डाल देती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि जो चाय मैंने चढ़ाई है ना, अगर थोड़ी सी देर हो गई ना मुझे कपड़े वपड़े डालने में, तो ये उबलेगी और ये जो है ना वो उबल के पतीली में से गिरेगी और मेरा चूल्हा जो है ना वो सारा का सारा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप तो जा रही हैं वॉशिंग मशीन की तरफ कपड़े डालने के लिए, लेकिन आपको ध्यान जो है ना वो चूल्हे की तरफ रखना पड़ेगा, चाय की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका ध्यान उधर से हट गया तो आप कपड़े डालने में इतना मसरूफ होंगी कि थोड़ी देर में जो है ना वो आपको किसी के चीखने की आवाज आएगी या और किसी किस्म की कुछ आएगी या नहीं आएगी, आपको खुद ही जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे ना उस तरफ, सोच उस तरफ होगी, हाथ किसी और तरफ काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो वॉशिंग मशीन में आपका कोई ध्यान नहीं है, राइट, या आप जो है ना वो आपने पता चला कि जो कपड़े नहीं धोने थे वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए और जो धोने थे जो है ना वो वॉशिंग मशीन में नहीं डाले, है ना, वाइट्स का लोड डालना था आपने, तो आपने कलर्ड कपड़े जो है वो वाइट्स के साथ मिक्स करके अंदर डाल दिए, क्या ये आप करेंगी? राइट, ऐसा करेंगी तो फिर जो है वो इधर भी काम खराब और पता नहीं उधर क्या होगा, उधर शायद काम खराब ना हो वॉशिंग मशीन का, तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जो हाथ काम, हाथ इसको कहते हैं पंजाबी के अंदर, हमारे तो चूंकि पंजाब से हैं तो वो पंजाबी के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हथ कारवल दिल चायवल, ठीक है, हाथ जो है वो आपका काम काज में मसरूफ है, यानी वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालने के अंदर मसरूफ है, लेकिन दिल चायवल, दिल जो है ना वो आपका चाय की तरफ मुतवज्जे है, ध्यान आपका चाय की तरफ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ध्यान रखना। तो आप जब नमाज पढ़ रही हैं तो आपका हाथ जो है ना वो तो यूं करके ऊंचा उठना, कान के ऊपर लगाना, फिर उसके बाद जो है वो हाथ में बांधना, लेकिन तवज्जो ध्यान किसकी तरफ है, ठीक है ना, ध्यान किसकी तरफ है कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ी हूं और उसकी इबादत कर रही हूं, ठीक है ना, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, ठीक है, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू व इन लम तकुन तराहू फइन्नहू यराक, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने एहसान की क्या तारीफ फरमाई कि तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं भी देखना ना, यानी तुम इतना इतना जबरदस्त तुम्हारा ध्यान नहीं है अल्लाह की तरफ, तो कम से कम इतना तो ध्यान रख सकते हो तुम कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ठीक है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सेकेंडरी लेवल का ध्यान है कि भाई अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम अल्लाह के सामने खड़ी हुई हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सोच रखना, ठीक है। तो ये सोच, अब नमाज में खड़े हो रहे हैं तो चाय की तरफ मत सोचना कि मुझे जो है वो जा करके वो चाय कहीं उबल के गिर ना जाए, या नमाज में खड़ी हो ना तो उस वक्त जो है ना तुम वॉशिंग मशीन की तरफ ना सोचना कि अच्छा मैं जल्दी से नमाज से फारिग हूँ, फिर मैंने सफेद कपड़े धोने हैं, फिर उसके बाद मैंने कलर कपड़े धोने हैं, फिर उसके बाद मैंने फलानी चीज धोनी है, नहीं, नमाज में जब तुम खड़ी हो रही हो ना तो अल्लाह की तरफ ही ध्यान रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है, और मैं उसकी इबादत कर रही हूं, ठीक है। फिर उसके बाद सना पढ़ते वक्त ये सोचे कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ कर रही हूं, ठीक है ना, यानी सना क्या है, ये अल्लाह ताला की तारीफ है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, ठीक है, तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी को तबारक अस्म तआला जद का वला इलाहा गैरुक, तो ये इसकी कुछ मानी वगैरह का इल्म हासिल कर लेना, तो आके पता तो चले ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पिछली क्लास के अंदर बात हुई थी कि अरबी जुबान की इतनी तालीम हासिल कर लेना कि वो आपके लिए चाइनीज से बढ़ करके कोई लैंग्वेज बन जाए, ठीक है ना। आप चाइनीज में चिंग पोंग पिंग पोंग आप कर रहे हो तो आपको एक एक हर्फ का भी पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से अरबी जुबान को पढ़ेंगे तो अरबी जुबान के अंदर तो बहुत सारे उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ उर्दू के वजन के ऊपर अरबी जुबान की समझ में आ जाएंगी, तो फर्क होता है ना, एक लैंग्वेज का आपको 0 पता है और एक लैंग्वेज का आपको 50% पता है या 40% पता है, तो फर्क है ना दोनों के अंदर। तो अरबी जुबान की जो है ना वो तालीम हासिल करना, बेसिक सर्फ और नहव जो है ना वो हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, इतना तो सलाहियत पढ़ने लिखने की हर औरत के अंदर भी होती है, ठीक है। तो बुनियादी सर्फ और नहव अल्लाह ताला जजाए खैर दें हमारे बुजुर्गों को, उन्होंने ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी किताबें लिख दी हैं इनके ऊपर, हमने जो आलम कोर्स के अंदर पढ़ी और बहुत सारे आप में से भी लोगों ने पढ़ी, इल्मु सर्फ और इल्मु इल्मु नहव, पतली पतली किताबें ये, और ये काफी होती हैं, तो इससे जो है ना वो आपको नमाज के अल्फाज का पता चल जाता है कि आप पढ़ क्या रही हैं, ठीक है। तो सना पढ़ते वक्त ये सोचिए कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ कर रही हूँ। इसी तरह किराअत, तस्बीहात और दीगर अरकान में से हर एक को इस तरह अदा करे कि गोया वो अल्लाह ताला को देख रहा है, क्योंकि अगर वो अल्लाह ताला को नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह ताला तो उसको देख रहा है, ठीक है, वही हदीस जिब्राइल के अल्फाज उर्दू के अंदर हजरत ने बयान फरमाया जो अभी आपके सामने साथ ने भी पढ़े थे। इस ध्यान और तवज्जो से चंद दिन जब नमाज पढ़ेगा तो उसके बाद उसकी तवज्जो नमाज में नहीं बटेगी और नमाज में सुरूर आएगा, ठीक है, यानी आपकी नमाज जो है ना फिर बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जिन्होंने कभी चाय ना बनाई हो, ठीक है ना, तो वो एक दिन जब चाय बनाने के लिए खड़े होते हैं तो फिर उन्होंने लाजमन चूल्हा गंदा करना होता है, ठीक है ना, लेकिन आप माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है ना वो रोजाना चाय बनाती होंगी और चूल्हा जो है ना वो रोजाना साफ रहता होगा, तो क्या फर्क है आप में और आपके फलाने साहब में जो शायद आपके शौहर हो या आपका कोई बेटा हो, है ना, वो जब चाय बनाता है तो वो चूल्हा गंदा कर देता है और आप चाय बनाती हैं तो चूल्हा गंदा नहीं हो जाता, क्यों भाई, क्या फर्क है आप दोनों के दरमियान, ठीक है ना। ये कोई नहीं है कि औरत के सिन्फ नाजुक के अंदर चाय बनाने की अल्लाह ताला ने हुनर डाल करके उसको पैदा किया होता है, दिस इज पार्ट ऑफ फेमिनिनिटी कि चूल्हा गंदा किए बगैर चाय बनाना, दिस इज पार्ट ऑफ निस्वानियत, नो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ निस्वानियत, ठीक है ना, तो फिर आप क्यों नहीं गंदा करती, वो क्यों गंदा कर देते हैं, फर्क सिर्फ यही है, यही फर्क है कि आप रोजाना ये वाला काम करते करते जो है ना, वो आपको ध्यान बनाने की आदत हो गई है, ठीक है ना। ऐसा कोई थोड़ी करती हैं आप कि आप जो है वो चाहे जब चढ़ाई है तो अब आप टिकटिकी बांध करके उसको देखती रहती हैं, क्या ख्याल है? ऐसा करती हैं आप, टिकटिकी बांध करके जो है ना, वो 10 मिनट लगे उबलने में, या आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आप उधर से हिलती नहीं है, इस वजह से चूल्हा गंदा नहीं होता। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, राइट? कोई करता है इस तरीके से? नहीं, आप दूसरे काम भी कर रही होती हैं, वही किचन के अंदर दूसरे काम कर रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका ध्यान लग जाता है ना चाय की तरफ, आप आदी हो गई हैं इस चीज की, ठीक है ना। जबकि दूसरा शख्स जो है ना, वो भी टिकटिकी बांध करके नहीं देख रहा होता, लेकिन उसका ध्यान जब दूसरी तरफ जाता है तो चाय की तरफ से उसका ध्यान खत्म, ठीक है ना। और वो जो है ना, उसने काम खराब ही करना होता है। तो यही वाला उसूल अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, अगर चाय बनाई होगी तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। या अगर बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेकर के आई होंगी और चाय हमेशा कोई दूसरा बना करके आपको पेश करता है, तो आपको यकीनन समझ में नहीं आया होगा ये वाला उसूल, ठीक है ना। जैसे कि आजकल औरतों को बनाया जा रहा है, तुम अच्छी से मेहनत करो और पढ़ाई करो और ग्रेड्स लेकर के आओ और फलाना करो ढिमकाना करो, ठीक है। तो फिर उनको तो ये उसूल समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अगर आपको ये उसूल समझ में आ गया है तो इसी उसूल को आप नमाज के ऊपर अप्लाई करो, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, मेहनत रखें, कोशिश करें, दिन में 5 मरतबा आपको मौका मिलता है। चाहे तो कम से कम पाकिस्तानी लोग 5 मरतबा नहीं पीते, 2 दफा पीते हैं ज्यादा से ज्यादा। इंडियन लोग जो है वो 10 दफा पीते हैं, ठीक है ना। तो अगर 10 दफा जो है चाय बना रही है तो उनको और जल्दी जो है वो, तो मुसलमान जो है उसने 5 मरतबा नमाज पढ़नी होती है। सोचें, अगर रोजाना आप 5 मरतबा ये वाली मश्क करेंगी तो फिर कितनी जल्दी जो है ना वो नमाज में ध्यान बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो है ना वो मुराकबे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा तसव्वुफ की बारीकियों में जा करके, और आपको मुराकबे करने की, और आपको लताइफ के ऊपर फैज आने की नियत करने की, और फलाना करने की, ढिमकाना करने की, इसकी भी नियत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो बहुत आसान काम है, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो बात को समझते हैं। हकीम उल उम्मत उनको फ्री में नहीं कह दिया लोगों ने, ठीक है ना। उनको समझ 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 आती है ये वाली बात, औरतों से मुराकबे नहीं होने वाले। तो जब नहीं होने वाले तो फिर क्यों कह रहे हो उनको करने के लिए? हमारे हजरत ने तो कहा था, नहीं है औरतों को इतना मुराकबे नहीं होने इनसे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कुछ दूसरी रीजंस की वजह से थोड़ा बहुत करना जो है ना वो औरतों को भी करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा ये 2-2 घंटे के मुराकबे, 4-4 घंटे के मुराकबे, ये इनसे नहीं होने। और अगर कर भी रही है ना तो असल में समझ लें कुछ और कर रही है, मुराकबा कर नहीं रही है असल में। जो 4 घंटे बैठी हुई है ये मुराकबा नहीं कर रही है, कुछ और कर रही है असल में, ठीक है। तो जो करने का काम है वो तो करें ना, जो आपके किचन से ही रिलेटेड है, जो कि आपके दीगर रोजमर्रा के आदतों से रिलेटेड है, वो काम कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह मकसद हाल हासिल हो जाएगा, ठीक है जी। कोई सवाल? नमाज में ध्यान बन गया, इंशाल्लाह अगली नमाज से मेहनत शुरू, ठीक है। अब जोहर का वक्त आने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो जोहर की नमाज से वाली मेहनत शुरू कर दें। अपने नफ्स और दूसरों के शर से बचने का तरीका, तो फरमाते हैं यानी अपने नफ्स के शर से बचने का और फिर दूसरों के शर से बचने का तरीका क्या है? तो फरमाते हैं कि ऊपर जितनी अच्छी और बुरी बातों और सवाब और अजाब की चीजों का बयान आया है, इनमें से 2 चीजें खराबी पैदा कर देती हैं, ठीक है। यानी ये जो बुरी बुरी हमने अखलाक जमीमा पढ़े थे, ठीक है, कि इससे यानी ये नुकसान है, ये नुकसान वाली चीज है, ये नुकसान वाली चीज है, तो ये अखलाक जमीमा पैदा कैसे होते हैं इंसान के अंदर, ठीक है ना। तो फरमाते हैं कि 2 चीजें जो है ना ये खराबी पैदा करती हैं, 2 चीजें खराबी पैदा करती हैं। एक तो खुद अपना नफ्स, ठीक है, हमारे यहाँ फरमाते हैं गुरु घंटाल, ठीक है, यानी असल जो गुरु है ना तो वो तो इंसान का अपना नफ्स है। शैतान की भी मिसाल देते हैं कि इब्लीस ने जो अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया, आदम को अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो किस शैतान ने उसको बहकाया था, है ना। उस वक्त तो कोई शैतान था ही नहीं, वो तो खुद इब्लीस, वो खुद जो है वो शैतान बनाया, फिर उसने जो है वो आगे अपने चेले तैयार किए, ठीक है। तो उसको किसने बहकाया, किसने उसको जो है वो नाफरमानी के ऊपर उकसाया? उसका अपना नफ्स था, ठीक है। और इंसान के साथ भी यही मामला है कि असल में तो उसका अपना नफ्स होता है, शैतान तो सिर्फ उसको आइडियाज दे रहा होता है, सिर्फ उसको जो है ना वो वसवसे और गुनाहों के तरीके सिखा रहा होता है, क्योंकि नफ्स की एक मजबूरी है कि नफ्स जिद्दी तो है, नफ्स अक्खड़ तो है, लेकिन जाहिल है, इल्म नहीं है इसके पास। तो इल्म इसको किधर से मिलता है, इसका उस्ताद कौन होता है? उस्ताद जो है ना वो शैतान होता है, ठीक है। तो शैतान का काम है इसको पढ़ाना, लेकिन अब उस इल्म के ऊपर अमल करना ये तो इसने खुद ही करना होता है ना। जैसे आप जो है वो अब इस फकीर की क्लास ले रही हैं, तो मेरा काम क्या है आपको पढ़ाना, जो किताब के अंदर लिखा हुआ था, जो अपने मशायख से सीखा था, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको हाथ पकड़ करके अमल तो नहीं करवा सकता ना, राइट। सब कुछ समझा दिया आपको, लेकिन अब जोहर की नमाज में आपके सर पे खड़े होकर के आपसे जो है वो ध्यान तो नहीं करवा सकता, वो तो आपने खुद करना है ना। बिल्कुल यही मामला जो है वो शैतान का भी है, वो पढ़ा रहा होता है, सिखा रहा होता है, आइडियाज दे रहा होता है, लेकिन सर पे खड़े होकर के वो काम नहीं करवा रहा होता, वो खुद करना होता है, ठीक है। तो वो खुद करने का मतलब क्या है कि नफ्स कर रहा होता है इंसान का। तो फरमाते हैं कि हर वक्त तरह तरह की बातें समझाता है, नेक कामों में बहाने निकालता है। ये तरह तरह की बातें समझाने का मतलब यही है कि बहाने निकालता है, और बहाने निकालने के तरीके उसको शैतान समझाता है, ठीक है ना। इसको खुद तरीके नहीं आ रहे होते हैं, ये तो छोटा सा बच्चे की मानिंद होता है। नेक कामों में बहाने निकालता है, और बुरे कामों में अपनी जरूरतें याद दिलाता है। अजाब से डराओ तो अल्लाह ताला का गफूर और रहीम होना याद दिलाता है। यानी जितनी इसने नॉलेज शैतान से हासिल कर ली होती है ना, अब इस नॉलेज को जो है ना ये यानी याद दिलाता रहता है, ठीक है। हद तक शैतान से हासिल की हुई नॉलेज के खाली नहीं होती, बल्कि जो उसने नेक लोगों से जो नॉलेज हासिल करी होती है ना, उस नॉलेज को भी जो है वो गलत जगह पे अप्लाई करना वो नफ्स कर रहा होता है, गलत जगह पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अल्लाह की गफूर और रहीम होने की बात जो है वो इसने किसी अल्लाह वाले से सीखी होगी, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, लेकिन उसको अप्लाई किधर करना था कि भाई कोई गुनाहगार इंसान है तो उसके बारे में अच्छा गुमान रखे कि अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे उसको, अल्लाह ताला उसको जो है वो नेकी की तौफीक अता फरमा देंगे, ठीक है। लेकिन वो उसको अप्लाई किधर करता है कि मैं जो गुनाह कर रहा हूँ ना, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मुझे माफ कर देंगे। तो इस वजह से जो है ना वो बगैर तोबा के ध्यान की तरफ, बगैर तोबा की नियत से जो है ना वो बस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता वाली नियत के साथ गुनाह कर रहा होता है। ऊपर से शैतान उसको सहारा देता है कि मजीद नॉलेज उसको देता रहता है, मजीद नॉलेज उसको देता रहता है, ताकि ये इस नॉलेज को अब्यूज करता रहे। दूसरे फसाद डालने वाले वो आदमी है, ठीक है ना, वो दूसरे लोग हैं, यानी माहौल मुआशरे के जो लोग हैं ना, अपने नफ्स के अलावा दूसरों के जो नफ्स होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा यानी खराबी पैदा करने वाला दूसरा एजेंट क्या होता है, वो लोग हैं जो इससे किसी तरह का ताल्लुक रखते हैं, या तो अजीज व अकारिब हैं, या जान पहचान वाले हैं, या बरादरी कुंबे वाले हैं। कुछ गुनाह तो इसलिए होते हैं कि उनके पास बैठने से उनकी बुरी बातों का असर इसमें आ जाता है, और बाज गुनाह उनकी खातिरदारी की वजह से होते हैं, और बाज इसलिए होते हैं कि उनकी निगाह में हल्कापन ना हो, और बाज गुना इसलिए हो जाते हैं कि लोग उसके साथ बुराई करते हैं, कुछ वक्त इस बुराई के रंज में, कुछ वक्त उनकी गीबत में, और कुछ वक्त उनसे बदला लेने की फिक्र में खर्च होता है, और फिर इससे तरह तरह के गुनाह पैदा हो जाते हैं। गर्ज सारी खराबी इस नफ्स की ताबेदारी की वजह से है, इसलिए इसकी खराबी से बचने के लिए दो बातें जरूरी, ठीक है। यानी बेसिकली इन सिंपलर वर्ड्स, वैसे तो अल-थानवी रहमतुल्लाह ने जितने आसान और सिंपल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो उनसे ज्यादा हम क्या सिंपल अल्फाज अदा इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ही आसान इसको कैटेगराइज करने के लिए, एक इंसान का अपना नफ्स उसको गुनाह के ऊपर आमादा करता है, और दूसरा जो है ना वो उसकी सोहबत, ठीक है, कि जिन लोगों के साथ वो सोहबत रखता है ना, तो वो उसको जो है वो यानी वो नफ्स नहीं होते, वो शैतान नहीं होते, बल्कि वो दूसरे इंसान होते हैं जो कि उसको किसी ना किसी वजह से बुराई के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके मुख्तलिफ शक्लें भी हजरत ने लिख दी हैं कि उनके पास बैठने की वजह से उनका असर हो जाता है। ठीक है, यानी वो एक तो दिल का दिल के ऊपर असर होता है, दिल का जो साथ रहने वाले दूसरे दिल होते हैं ना उनके ऊपर एक असर पड़ता है। ठीक है, अभी कल ही आज उस हदीस को कहीं पे दोबारा पढ़ रहा था कि हाँ कल तो खैर नहीं लेकिन 2-3 दिन पहले कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफा सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा कराम को। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरने के बाद फरमाया कि तुम में से किसी ने जो है ना वो अच्छे से वुजू नहीं किया था, अच्छे से वुजू नहीं किया था। ठीक है, तो उस शख्स के इस वुजू अच्छे ना होने की वजह से मुझे नमाज के अंदर जो है ना वो यानी मुझे यानी तकलीफ हो रही थी। ठीक है, तो वुजू क्या चीज है? वुजू जाहिरी तहारत नहीं है, वुजू बातनी तहारत है। ठीक है ना, यानी वुजू से जो है ना वो आप अपने बदन का मैल कुचैल दूर नहीं करते। ठीक है, बल्कि वुजू एक एक अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं कि भाई ये भी धो लो, ये भी धो लो, ये भी धो लो, और इस चीज के ऊपर मसा कर लो। ठीक है, तो बाल के अंदर आपकी कीचड़ लगी हुई है, मसा करने से कौन सी कीचड़ दूर हो जाती है आपके बाल की? मसा करने से जो है वो कोई कीचड़ नहीं दूर होती। अल्लाह का एक हुक्म है कि ये चार काम तुम कर लो तो अब तुम जो है वो नमाज पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इससे रूहानी तहारत मिलती है, वुजू करने से जिस्मानी तहारत नहीं मिलती, वुजू करने से रूहानी तहारत मिलती है। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से किसी ने जो है ना वो रूहानी तहारत अच्छे से हासिल नहीं करी थी तो उसका जो असर है वो मेरे ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे जो है वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे दिल की तवज्जो उसकी वजह से मुतासर हो रही थी जिसने रूहानी तहारत अच्छी हासिल नहीं करी। अब तस्वुर करें कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला की जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे जो है वो सहाबा कराम की जमात है, लेकिन किसी एक शख्स के रूहानी तहारत के अंदर कमी है तो उसका असर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो हम अगर किसी के साथ ऐसी सोहबत अख्तियार करेंगे जिसका के दिल जो है वो नजिस है और दिल जो है वो यानी गुनाहों के अंदर लिथड़ा हुआ है तो उसके दिल का असर जो है वो हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा रूहानी तहारत वाला। भाई रूह रूह का पाक होना, ठीक है, रूहानी तहारत वाला भाई जिस्म के ऊपर मैल कुचैल लग जाए तो उसको जब आप साबुन पानी से रगड़ करके धोते हैं तो उसको जिस्मानी तहारत कहते हैं ना। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी एक रूह है, सही है, तो रूह जो है वो जो गुनाहों की वजह से गंदी हो जाती है। ठीक है, तो जब आप रूहानी तहारत हासिल करते हैं तो वो गंदगी जो है वो दूर हो जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है रूहानी तहारत वाली, और क्या। अच्छा चलें, अभी रहने दें, अभी वो असल में पॉइंट भी नहीं है ये वाला रूहानी तहारत वाला, लेकिन मकसद ये था बताने का कि दिल का असर होता है दूसरों के ऊपर। तो इस वजह से अच्छी सोहबत अख्तियार करनी चाहिए, अपने इख्तियार से इंसान अच्छी सोहबत अख्तियार करे, जिस चीज़ के ऊपर उसका इख्तियार नहीं है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला से जो है वो मदद मांगता रहे। ठीक है, जैसे आपको ऐसे लोगों के साथ घर के अंदर भी रहना पड़ता है या मर्दों को जो है वो जॉब पे भी ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो कि काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं और फासिक हैं, फाजिर हैं। अब आप जॉब तो नहीं छोड़ कर के घर पे बैठ सकते हैं ना कि जी मुझे फासिकों के साथ काम नहीं करना। तो ऐसे मौके पर इंसान क्या करे कि उसके दिल के ऊपर उनके दिलों का असर ना पड़े, तो उसके लिए कसरत इस्तिगफार और अल्लाह ताला से मदद मांगता है, या अल्लाह मेरे दिल को इन लोगों की जो है ना वो असर से आप महफूज रखिएगा, और कसरत इस्तिगफार करता रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। ये इस्तिगफार जो है ना वो इंसान के दिल को बुरे असरात से बचाता है। ठीक है जी, तो सोबत का असर पड़ता है, फिर लोगों की खातिरदारी, यानी आप जितना लोगों की तरफ जो है ना वो मायल होते हैं तो अब आपको अच्छा नहीं लगता कि वो बुरा मान जाएंगे, तो उनके बुरा मान जाने की फिक्र की वजह से जो है ना फिर इंसान गुनाह करता है। जैसे बहुत सारी खवातीन जो हैं जिनके घरानों के अंदर पर्दे का माहौल नहीं था, तो अब उनकी जो है ना वो बड़ी अच्छी जो है वो दोस्तियां बनी हुई होती हैं अपने कजन्स के साथ, और बड़ा जो है ना वो यानी बड़ा फ्रैंकनेस होती है गैर महरम दूसरे रिश्तेदारों के साथ। तो अब जब ये बेचारियां जो है ना वो पर्दा करना शुरू करती हैं ना, तो बाहर तो ये कर लेती हैं जिन लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं है, जो इनके जानने वाले नहीं है, तो वहां पर तो ये बुरका वुरका पहन लेती हैं, ठीक है। लेकिन जो अपने पुराने रिश्तेदार थे ना, तो वो उनके सामने समझ में ही नहीं आ रहा होता कि यार इनसे कैसे पर्दा, मैं कैसे करूं इनसे पर्दा, मैं कैसे जो है वो इनसे जो है वो यानी इनके साथ बैठ करके जो है वो कुछ हालात हाजरा के ऊपर गुफ्तगू ना करूं, और कैसे जो है वो खानदान के लोगों के बारे में बातचीत इनके साथ बैठ करके मैं कैसे ना करूं। ये तो यानी इतने करीबी रिश्तेदार हैं और ये तो मैं इतनी फ्रैंक हूं इनके साथ, तो इनसे पर्दा समझ में नहीं आ रहा होता। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा होता, वो यही वजह होती है ना कि जी उनके साथ जो आपका एक खातिरदारी वाला ताल्लुक है ना, तो उसकी अहमियत आपके दिल में ज्यादा होती है, दिल में ज्यादा होती है, और अल्लाह के हुक्म की अहमियत आपके दिल के अंदर कम होती है, ठीक है ना। ये बात आप भूल जाती हैं इस बात को, या हम भूल जाते हैं, मैं तो मर्द हूं तो इस वजह से मेरे ऊपर पर्दे का फर्ज नहीं है, लेकिन दूसरे फराइज हैं मेरे ऊपर, तो मैं किसी की खातिरदारी की वजह से कि यार ये बुरा मान जाएगा, माइंड कर जाएगा, तो मैं नमाज कैसे पढ़ूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, उसकी अहमियत मेरी नजर में कम है, और इन साहब का माइंड कर जाना जो है ना ये मेरी नजर में ज्यादा है, ठीक है। तो यही मामला जो है वो पर्दे के साथ भी है। तो वही हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि उनकी खातिरदारी की वजह से बाज गुना होते हैं, बेपर्दगी का गुना, जैसे अल्लाह ताला के हुक्म को कम अहमियत देना, तो बाज इसलिए होते हैं कि उनकी निगाह में हल्कापन ना हो जाए, है ना, कि ये तो मौलवी बन गई है, ये तो जो है ना वो फलानी हो गई है, और ये जो है ना दकियानूसी हो गई है, तो इस वजह से जो है ना वो इसको तो अपने एजुकेशन का ख्याल नहीं है, इसको तो अपनी औलाद के एजुकेशन का ख्याल नहीं है ना। तो हल्कापन लोग हमें जो है ना वो ऐसे डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे हमारे बारे में, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कि कोई हमारे बारे में जो है ना वो ऐसी कोई कमेंट्स ना दे जो है वो अपना दीन बर्बाद या अपनी औलाद का दीन बर्बाद, ठीक है। तो वजह क्या बन रही,
चलो
ये दूसरी जो आपने बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स और बड़ी बनाई हुई है ना, तो वो फिर आपकी गुनाह का सबब बन रही है। कई का कहना ये होता है कि बचपन से इतने छोटे से साथ रहे, अब पर्दा कैसा तो भाई इसका जवाब यही है कि आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि यानी बचपन से साथ रहे हैं लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा है, वो कहें कि अब पर्दा कैसा, तो आप उनको जवाब दें कि अल्लाह का हुक्म ऐसा। क्या है अल्लाह का हुक्म कि जी नामहरम जो होता है ना वो उससे साथ पर्दा करना होता है, अब वो बड़ा हो या छोटा हो। अब बूढ़े हो जाने के बाद पर्दा कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन बूढ़े हो जाने के बाद, वो भी बूढ़ों के लिए होती है यार, ठीक है ना। अभी बड़े मजे की बात हुई, हम गए हुए थे कराची, ठीक है। तो कराची के अंदर जो है ना वो एक मार्केट है जिसका नाम है कुर्तुबा मार्केट, ठीक है। तो आप में से शायद किसी को ना भी पता हो क्योंकि आप उस इलाके जो कराची वाली हैं भी, तो वो कुर्तुबा मार्केट वाले इलाके में शायद, नहीं ना, वो हैदराबाद में वो कुर्तुबा मार्केट, तो वो कुर्तुबा मार्केट जो है ना वहां पर सारी की सारी औरतों की चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो अब औरतें वहां पे रश लगा हुआ होता है वहां पे औरतों, है ना। लेकिन उस मार्केट की जो गलियां हैं ना वो इतनी पतली हैं कि लिटरली दो बंदे एक दूसरे से टकराए बगैर वहां से नहीं गुजर सकते, अनलेस के वो कोशिश कर कर जो है ना वो गुजरे, तब तो टकराए बगैर गुजर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से दो बंदे गुजरे ना तो वो टक्कर होनी जरूरी है उनकी, यानी कंधा वंधा तो मस होगा, ठीक है। तो ऐसी वो कुर्तुबा मार्केट है, और एक और हैदरी मार्केट में फिर थोड़ी सी बड़ी, हैदरी भी एक बड़ी मार्केट है इसी तरह की, लेकिन वहां पे फिर थोड़ी सी चौड़ी गलियां हैं। एनीवे तो कुर्ता मार्केट में जो है वो हम रास्ते में रुकना था और घर वालों को काफी चीजें खरीदनी थी वहां से, तो अब वहां पे हम जो गए हैं ना, तो वहां पर माशाल्लाह 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 चश्मे बद्दूर है ना, कि खवातीन में से मेरे ख्याल में कोई 70 या 80% जो थी ना वो बुरके वाली थी, ठीक है ना, 70-80% खवातीन जो थी वो बुरके में वहां पे आई हुई थी। लेकिन बुरके में होने के बावजूद जिस अंदाज से वो उनकी आवाजें आ रही थी ना दुकानदारों से बातचीत करने की, तो वो यानी जो बेबुरके वाली है वो भी ऐसी बात कर रही है, जो बुरके वाली है वो भी ऐसी बात कर रही है, ठीक है। तो इस हाजिर ने बाद में घरवानों से कहा कि एक बात तो अब तक सुनी थी कि जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो बुढ़ापे में पर्दा जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। आज जो है वो हमें एक और उसूल मुझे समझ में आया कि कुर्तबा मार्केट में आकर के भी पर्दे की पाबंदियां जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि 70-80% जो है वो बुरखे वालियां आकर के जिस तरीके से दुकान वालों से बातचीत कर रही हैं, यानी एक जो है ना वो जो है ना भाव ताव करने का एक अंदाज होता है, तो ये तो पर्दे की बड़ी रिलैक्सेशन होगी इसके अंदर। बहरहाल तो भाई ये बचपन का पर्दा कैसा और बचपन से ये है पर्दा, भाई सीधी सी बात है कि आपको ना तो शरीयत के हुक्मों का पता है हमें, ठीक है, और ना जो है वो शरीयत के हुक्म ना मानने के ऊपर जो अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह ताला का अजाब आता है तो उसका भी हमें नहीं है, ठीक है। तो असल मसला हमारा जो है ना वो जहालत है, असल मसला क्या है हमारा, जहालत, ठीक है। कल सूरह यूसुफ की तफसीर हम मर्दों में पढ़ा रहे थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह अगर आपने मुझे जो है ना वो इस गुनाह से नहीं रोका ना जिसकी तरफ ये औरतें मुझे माइल कर रही हैं, मुझे नहीं रोका नहीं बल्कि इन इन औरतों के जो मकरो फरेब है ना कि ये मुझे गुनाह में इन्वॉल्व करना चाहती हैं, अगर आपने उसको मुझसे दूर नहीं किया ना तो मैं इनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा, मैं इन औरतों की तरफ मायल हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। तो उसके ऊपर फिर बात समझाई थी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने पारुल कुरान में भी लिखी है कि ये जो जहालत है ना इंसान की ये दरअसल उसको गुनाह के अंदर इन्वॉल्व करती है, और इल्म जो है वो गुनाह से बचने का तकाजा करता है, ठीक है। तो हमारा असल मसला जहालत है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, हमें जो है ना वो दूसरे उलूम और दूसरे फनून और दूसरे चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन हमें अपने दीन की बुनियादी बातों का नहीं पता होता, ठीक है। तो इस जहालत की वजह से खानदान के बड़े बूढ़े भी जिनके के बाल सफेद हो चुके हैं नमाजें पढ़ पढ़ करके, तो नमाजों का तो इल्म उन्होंने थोड़ा बहुत फिर भी हासिल कर लिया ना, लेकिन उनको पर्दे का नहीं पता होता, हमें नहीं पता था यार चंद दिन पहले तक, जब तक अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा करके मशाइख के साथ नहीं जोड़ दिया, उससे पहले हमें नहीं पता था पर्दा चीज क्या होती है, सतर क्या चीज होती है, बाल सतर के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, कुछ नहीं पता है ना। अभी मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू और पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहू के साथ ये आजिज अल्लाह ताला ने अजीब मामला फरमा दिया, उनके साथ बैठा हुआ जो है वो खाना खा रहा था एक शादी के अंदर, ठीक है। तो मुफ्ती साहब को मैंने यही कहा, मेरे सामने बैठे हुए थे, अदर जी से इजाजत भी मांगी, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब से बात करी कि मुफ्ती साहब हम इधर ही कराची के अंदर हम पैदा हुए और जिस इलाके में आपके वालिद साहब ने पहला मदरसा बनाया था ना दारुल उलूम कराची, ठीक है, तो हम उसी इलाके में तो रहते थे, वहीं पे जो है वो हम पले बड़े हैं, वहीं पे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, सब कुछ हमने किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जामिया बिन्नौरी टाउन क्या चीज होती है, हमें नहीं पता था कि जामिया दारुलूम कराची क्या चीज होती है, ये वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, इस वक्त जो है ना दुनिया के अंदर दारुलूम देवबंद के साथ साथ दारुलूम कराची और दारुलूम बिनोरी टाउन ये उस लेवल के, यानी यानी समझ लें कि दुनियावी एतबार से जो हार्वर्ड और यानी MIT और कार्नेगी मेलन और जो इस किस्म की यूनिवर्सिटीज है ना, दीनी एतबार से ये हैं दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज, लेकिन कराची में रहने वाले पढ़े लिखे और शरीफ घरानों वाले और नमाज पढ़ने वाले घरानों वालों को नहीं पता होता इन चीजों का। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो है वो दीन की हवाएं चल गई कि अब तो पता चल जाता है, लेकिन आज से 20 साल पहले नहीं पता चलता था किसी को। तो हमारे दीन की तरफ से जहालत जो है ना वो एपिक लेवल्स के ऊपर है, एपिक लेवल्स के ऊपर, हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर है। ठीक है, तो इसी वजह से, इस जहालत की वजह से फिर इस तरह की हम बातें करते हैं और हमारे पास जो है वो कोई जवाब ही कोई नहीं होता। ठीक है ना, कोई समझ में नहीं आ रही होती बात कि हम असल में हकीकत क्या है, हम क्या इनको समझाएं, कैसे समझाएं वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पर हम ये वाली क्लास रोकते हैं, या दो लाइनें बस पढ़ करके फिर इस क्लास को रोकते हैं, क्योंकि जो बात चल रही थी कि भाई हजरत ने फरमाया ना कि उनकी खराबी से बचने के लिए दो बातें जरूरी हैं, तो वो दो बातें पढ़ लेते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। कि एक तो अपने नफ्स को दबाना और उसको कभी बहला फुसला कर, कभी डांट डपट कर दीन के राह पे लगाना। ठीक है, तो नफ्स की खबासत से बचने के लिए ये फरमाया हजरत ने, नफ्स को दबाना। ठीक है, चाहे बहला फुसला करके दबाओ, चाहे उसको डांट डपट करके दबाओ। और दूसरा काम किया कि लोगों से ज्यादा लगाव ना रखना और इस बात की परवाह ना करना कि वो अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। इसलिए इन दोनों जरूरी बातों को अलग अलग लिखा जाता है, यानी तफसील जो है वो फिर आगे हजरत ने इन दोनों बातों की फरमाई है। तो इनमें से दूसरी जो बात है ना, वो फिर आपके इस कॉमेंट का या इस सवाल का जवाब भी है। ठीक है, कि भाई आप जितना गहरा ताल्लुक लोगों से बनाएंगी तो फिर यही होगा कि वो फिर ये पर्दा, फिर पर्दा कैसा, और वो पर्दा कैसा, और ये कैसा, और वो कैसा। ठीक है, तो भाई लोगों को जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं अपने सर पे चढ़ाएं कि वो खुदा बन जाए आपके। ठीक है ना, या वो जो है ना वो अल्लाह के रसूल के बराबर का मकाम आपके ऊपर हासिल कर लें, कि अब वो बताएंगे कि जी क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। ये तो भाई अल्लाह के रसूल ने बताना था ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमने रिश्तेदारों को और दोस्त अहबाब को और मिलने जुलने वालों को इतना सर पे चढ़ा लिया होता है कि वो फिर हमें डिक्टेट कर रहे होते हैं कि ये करो और ये ना करो। ठीक है, चले यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं, 10 मिनटों की ब्रेक के बाद फिर मिसाली बहू वाली क्लास शुरू करते हैं।